आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th के साइंस का 12th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये चैप्टर शुरू किया था और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम, ये हमने पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने बात की थी कि वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक करंट का एस्टैब्लिशमेंट करा सकते हैं, चार्ज का फ्लो करा सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है बैटरी। तो वो डिवाइस जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक करंट एस्टैब्लिश करा सकते हैं किसी सर्किट के अंदर, तो वो डिवाइस कहलाएगा बैटरी या फिर सेल। अब सर्किट क्या होता है, सर्किट होता है एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ जिसके अंदर चार्ज का फ्लो हो रहा है। साथ में हमने ये भी बात की थी कि जिस वक्त इलेक्ट्रिक करंट की खोज हुई थी उस वक्त चार्ज कौन सा होता है जिसका फ्लो हो रहा हो ये नहीं पता था। उन्हें लगता था कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, लेकिन आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से करंट होता है हमारे सर्किट के अंदर। तो जब उन लोगों को पता नहीं था तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से होता है, तो इसी वजह से उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में रख करके ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मानी जाएगी, और यही कन्वेंशन आज भी फॉलो की जाती है। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होते हैं उनका नेचर ऑपोजिट होता है पॉजिटिव चार्ज के, इसीलिए कहा गया कि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में करंट का फ्लो माना जाएगा, करंट का मूवमेंट उसके विपरीत दिशा में माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इक्वेशन भी देखी थी, इक्वेशन 12.1। इसमें आपको फॉर्मूला दिया गया है बेसिकली आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू है चार्ज, टी है टाइम और आई है करंट। उसके बाद हमने बात की थी कि हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। साथ में अगर हमें करंट को एसआई यूनिट में रखना है तो हमें चार्ज को भी एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा और टाइम को भी एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। करंट का तो एसआई यूनिट हो गया एम्पियर और टाइम का एसआई यूनिट हो गया सेकेंड। तो अब बारी है चार्ज की, तो चार्ज को भी एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा। तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से हम लोगों को अगर करंट को एसआई यूनिट में एम्पियर्स में लिखना होगा तो हम उसके लिए कूलम्ब को भी उसके एसआई यूनिट में लिखेंगे, चार्ज को भी उसके एसआई यूनिट में लिखेंगे, कूलम्ब में लिखेंगे और टाइम को भी एसआई यूनिट में लिखेंगे, सेकेंड्स में लिखेंगे। किसी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको चेक करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगाते हैं ताकि जितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है सेम ही करंट एमीटर में भी फ्लो करे और हमें पता चल जाए कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये तो बात हो गई करंट से रिलेटेड। उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है जो कि हेल्प करता है टू फ्लो चार्ज फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमेशा चार्ज जब भी फ्लो करेगा वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। और उसके लिए वहां पर क्या किया जाता है, जो बैटरी यूज हो रही है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनमें रिएक्शन होता है, तो केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है जिससे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है। और इसी से ही हम डिफाइन भी करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में कितना होगा, वर्क डन कितना किया जा रहा है चार्ज के द्वारा टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना चाहते हैं तो उन दो पॉइंट्स के वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ट्रैवल करने में कितना एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है वो हम एनर्जी पता लगाते हैं, फिर उसको डिवाइड कर देते हैं उस चार्ज की वैल्यू से, तो हमें वहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर सिम्बॉलिकली लिखें तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, W वर्क डन है, Q है चार्ज। अब जैसे आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा कि करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका भी एक ऐसा यूनिट होता है और इसको हम वोल्ट कहते हैं। वोल्ट में हम लोग लिखते हैं और कैपिटल V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, W जो है वो एनर्जी है, Q जो है वो चार्ज है। तो अगर हम लोगों को वोल्ट यानी कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ऐसा यूनिट में, तो हमें वर्क भी ऐसा यूनिट में चाहिए होगा, जूल्स में चाहिए होगा, और चार्ज भी हमें ऐसा यूनिट में चाहिए होगा, कूलम में चाहिए होगा। तो इसी से हम लोग ऐसा यूनिट में वोल्टेज को लिख सकते हैं, अगर हमारे पास वर्क डन भी ऐसा यूनिट में हो और चार्ज भी ऐसा यूनिट में हो। उसके बाद अगर वोल्टेज को मेजर करना है किसी भी एक सर्किट के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सर्किट के पैरेलल में वोल्ट मीटर नाम का एक डिवाइस लगाना होगा जो कि आपको मेजर करके देता है इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतनी बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक और बात बताई थी कि जब भी कभी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो वो एक एवरेज स्पीड के साथ मूवमेंट करते हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है मिलीमीटर्स में होती है, इसकी वैल्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इतनी कम वैल्यू की स्पीड होने के बावजूद भी तुरंत स्विच ऑन करते ही बल्ब क्यों ग्लो करता है, इसलिए करता है क्योंकि जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है कि बल्ब के जस्ट बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट में आ जाता है, तो उसी के फ्लो से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश हो जाता है, तो इसीलिए बल्ब तुरंत ही ग्लो कर देता है। लेकिन आपको इससे ये समझ के नहीं चलना कि स्पीड बहुत ज्यादा वैल्यू की है, ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू बहुत कम होती है, मिलीमीटर्स में होती है, तो इतने कम ऑर्डर की होती है। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। अब हम आज की क्लास में सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। देखो होता क्या है कि हम जो भी बातें करते हैं उसको हमें थ्योरी में भी दिखाना होता है, उसे हमें पेपर पे रिप्रेजेंट करके देना होता है। आप फिजिकली तो कोई सर्किट बना सकते हैं, वायर यूज करके, बैटरी यूज करके, डिवाइस यूज करके, बल्ब वगैरह यूज करके, फैन यूज करके, लेकिन आप पेपर पे कैसे दिखाएंगे कि आपने सर्किट को कैसे बनाया। तो पेपर पे दिखाने के लिए अलग अलग साइन कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है उसके लिए अलग अलग साइन कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने रे डायग्राम के टाइम पे पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि हम लोग इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं लेंस के रिस्पेक्ट में या फिर मिरर के रिस्पेक्ट में, कहीं पर भी रखते हैं, पोजीशन अलग अलग होती है, लेकिन हमें उसे पेपर पे कैसे दिखाना है, तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स फॉलो किए थे। तो सिमिलर रूल्स हमें यहाँ भी फॉलो करने होते हैं टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन पेपर। तो आपको मालूम है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होती है, सेल होती है, साथ में वायर्स होती हैं, उसके बाद वो डिवाइस भी होता है जिसमें हम करंट फ्लो कराना चाहते हैं, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चीज़ों का जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं उनका डायग्राम बताया गया है, उनको डायग्रामेटिकली हम कैसे शो कर सकते हैं इसका कन्वेंशन हमें फॉलो करना होता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेबल 12.1 पेज नंबर 203 पर, इसमें आप लोगों को वेरियस सिंबल्स बताए गए हैं जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करने होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक सेल का कैसा सिंबल है। इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल में आप लोगों को पहले तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, फिर एक वर्टिकल लाइन दिख रही है, उसके बाद एक और वर्टिकल लाइन दिख रही है, लेकिन पहली वाली वर्टिकल लाइन की लेंथ लंबाई थोड़ी बड़ी है, दूसरी वाली जो वर्टिकल लाइन है उसकी लंबाई थोड़ी कम है, वो छोटे साइज की है, और फिर से एक और आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन्स है ये बेसिकली वायर्स होती हैं। कोई भी आप सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब आप समझते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, इस वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ऊपर से नीचे की ओर की डायरेक्शन जो है इसे वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टली ब्लैक गाढ़े ब्लैक कलर की स्ट्रेट लाइन बनाई है, वो वायर्स है। उसके बाद वायर से जुड़ी हुई एक आपने वर्टिकल लाइन बनाई है जो लार्जर लेंथ की है, उसी के बगल में एक छोटी लाइन भी बनाई है, वो भी वर्टिकल है लेकिन छोटे साइज की है, उसकी लेंथ लंबाई कम है। तो यहाँ पर दो आपने लाइंस बनाई है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक लंबी और एक छोटी, और इस तरीके की जो आप लिखते हैं डायग्राम बनाते हैं इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेल के लिए होता है, और इसमें से भी जो लंबी वाली लाइन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। पॉजिटिव टर्मिनल आपको पता होगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वो टर्मिनल है जिसका पोटेंशियल हायर होता है, और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका पोटेंशियल लोअर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो लंबी वाली लाइन दिखाई गई है सेल के अंदर, ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है और छोटी वाली लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तो बात हो गई सेल की, एक इलेक्ट्रिक सेल की। अब अगर आप लोगों को बैटरी बनाना है तो आपको पता है बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप बहुत सारे सेल्स को बना देंगे तो उसको इकट्ठा हम बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर आप जब बैटरी बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आपने जो सेल का डायग्राम बनाया तो एक ना बना करके आप 3, 4, 5 जितने भी सेल्स आपने लगाए हैं उस बैटरी के अंदर, तो वो आप डायग्राम से शो कर देंगे। तो आप मान लीजिए आपने यहाँ पर 3 सेल यूज किए हैं बैटरी के अंदर, तो आपने 3 ऐसे ही एक लंबी एक छोटी, एक लंबी एक छोटी, एक लंबी एक छोटी, इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम बनाना है और सभी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग टेबल 12.1 में आप लोगों को बैटरी जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। आप एक से अधिक सेल अगर यूज करें तो आप उसे सेल ना कह करके बैटरी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 3 सेल यूज किए हैं अपनी बैटरी के अंदर, तो इसीलिए आपने तीन पेयर ऑफ लाइन्स बनाई है जिसमें एक लंबी और एक छोटी लाइन है। एक लंबी और एक छोटी लाइन का एक कॉम्बिनेशन जो है इसको क्या कहते हैं, एक सेल। सिमिलरली दूसरा अगर आपको बनाना है तो एक लंबी एक छोटी फिर से बना देंगे, फिर तीसरा भी बनाना है, तीसरा भी सेल दिखाना है तो एक लंबी और एक छोटी फिर से बना देंगे। तो इस तरीके से आपने 3 सेल्स दिखाए हैं और इसमें से भी जो लंबी वाला लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटे वाला जो लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल है। अब आपको पता है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें अलग अलग जगहों पर स्विच लगे होते हैं, लेकिन जब हम लोग डायग्राम से शो करते हैं तो हम सिंपल सिंपल सर्किट्स लेते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमारे घरों में जैसे यूज होता है वैसा नहीं लेते हैं। हमारे घरों में तो बहुत सारे मल्टीपल स्विचेस होते हैं। तो स्विच बेसिकली क्या काम करता है, स्विच काम करता है सर्किट को ब्रेक करने का। सर्किट कहाँ से, सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को हम रोक सकते हैं, स्विच से रोक सकते हैं। अगर स्विच को ऑफ कर दिया तो सर्किट के अंदर करंट का जो पाथ होगा वो कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा और वो क्लोज्ड भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट से स्विच को ऑफ करते ही सर्किट ही ब्रेक हो जाता है। तो स्विच को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसी डायग्राम से, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सर्किट का, सर्किट डायग्राम का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको ओपन स्विच रिप्रेजेंट करना है तो आप देखें 12.1 जो टेबल 12.1 है पेज नंबर 203 पर, इसमें आप लोगों को थर्ड जो सीरियल नंबर 3 है उसमें आपको ओपन स्विच कैसा दिखता है दिखाया गया है। पहले तो आपको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, फिर 2 ब्रैकेट्स बनाने हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं, ये एम्प्टी स्पेस है, और इस तरीके से आपको बनाना है। उसके बाद अगर आपको दिखाना है कि स्विच जो है वो क्लोज है, यानी कि सर्किट कंप्लीट है, स्विच क्लोज होने का मतलब होता है सर्किट कंप्लीट है, स्विच क्लोज कर देंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। अगर स्विच ऑफ रखा है उसको कहते हैं स्विच ओपन है। ओपन कहने का मतलब है सिंपल भाषा में कि हमने ऑफ किया हुआ है स्विच को, करंट नहीं फ्लो कर रहा है। और अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया इसका मतलब है स्विच ऑन कर दिया आपने। तो अगर आपके घर की भाषा के हिसाब से बात करें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि हमने फैन ऑन कर दिया, यानी कि आपने स्विच क्लोज कर दिया है। अगर फैन को ऑफ करना होगा तो आप स्विच को ओपन कर देंगे। अब स्विच अगर क्लोज्ड है यानी कि आपका फैन ऑन है, तो स्विच ऑन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पर भी ब्रैकेट्स बनाते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स के बीचों बीच एक मोटा ब्लैक कलर का डॉट बना देते हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, ब्रैकेट्स के बीचों बीच ब्लैक कलर का मोटा गाढ़ा डॉट बना देते हैं। उसके बाद देखो, अगर हम लोगों को दिखाना हो कि 2 वायर्स जो है वो ज्वाइन किए गए हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, उन 2 वायर्स को, वायर आप कैसे दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, गाढ़ी स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। तो अगर आपको 2 वायर ज्वाइन करने हैं तो 2 स्ट्रेट लाइन्स को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका वायर का जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक और जॉइंट दिखाया गया है पेज नंबर 203 टेबल 12.1, इसमें आप देख सकते हैं 5th सीरियल नंबर 5th पर अ वायर जॉइंट आपको दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप वायर जॉइंट दिखा सकते हैं, आप लाइंस बनाएंगे और उन्हें टच करा देंगे, किसी कॉमन पॉइंट पे वो टच कर रहे होंगे तो वही उनका जॉइनिंग पॉइंट होगा। उसके बाद अगर हमें दिखाना हो कि वायर्स एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही हैं लेकिन जॉइन नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 वायर्स बनाने पड़ेंगे। एक वायर जो नीचे वाली वायर रहेगी, क्रॉसिंग कैसे होगी, एक वायर नीचे होगी दूसरी ऊपर होगी, जो टच नहीं कर रही हैं एक दूसरे को, वो उनको हमने जॉइन नहीं किया है, वो सिर्फ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इंसुलेटेड है दोनों की दोनों वायर्स, लेकिन वो क्रॉस कर रही हैं पर वो जॉइन नहीं की गई हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक वायर जो नीचे होगी उसे स्ट्रेट वायर से दिखाएंगे, जो ऊपर वाली वायर होगी उसको एक जगह पर हमें कर्व देना पड़ता है जहां से वो क्रॉस कर रही है नीचे वाली वायर को, तो वहां पर हम थोड़ा सा बल्जिंग बना लेते हैं। यहाँ पर देखो आप लोगों को दिखाया गया है, जो पेज नंबर 203 है यहाँ पर आ जाओ और टेबल 12.1 पे देखो, सीरियल नंबर 6 पे आपको दिखाया गया है वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। तो जो नीचे वाली वायर है उसे स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं, ऊपर जो है जो क्रॉस कर रही है नीचे वाली वायर को, उसको एक जगह से बल्ज किया गया, एक जगह से उसे कर्व दिया गया है, वो जगह है जहां पर दोनों वायर्स क्रॉस कर रही है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में क्रॉस कर रही है, तो ऊपर वाली वायर को कर्व दे दिया गया एक, और ये जो कर्व दिया गया है ऊपर वाली वायर को, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों वायर्स क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन जॉइंड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर आप लोगों को बल्ब शो करना है तो उसको आप लोगों को शो करने के लिए जो सीरियल नंबर 7 पर दिखाया गया है टेबल 12.1 में, इससे शो करते हैं। फर्स्ट वाला जो है वही यूज करते हैं, बल्ब का इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर बनाया गया है, जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिया गया है, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेज नंबर 203 पर टेबल 12.1 में जो सीरियल नंबर 7 है इलेक्ट्रिक बल्ब, इसमें आपको दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। एक पिक्चर में तो आप लोगों को छोटा सा बल्ब का ही पिक्चर दिखा दिया गया, तो इतना कॉम्प्लेक्स हम नहीं बनाते हैं। जो इन दो पिक्चर्स में से पहली वाली पिक्चर है उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को। उसके बाद अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए आप लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो सीरियल नंबर 8 में आपको दिखाया गया है, स्ट्रेट लाइन फिर zigzag लाइन फिर से स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने सीधा सीधा रेजिस्टर ही लगाया, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आपने कई बार ऐसा होता है कि फैन की जगह हम रेजिस्टेंस ही शो कर देते हैं, क्योंकि फैन का कोई आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायग्राम नहीं दिया गया, तो फैन ना बना करके हम उसका रेजिस्टेंस ही शो कर देते हैं, क्योंकि हर एक डिवाइस में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको बता देंगे, और फिर आपको सिर्फ इसी रेजिस्टेंस के सिंबल से बोलना होगा कि कोई डिवाइस यूज किया गया है उसका रेजिस्टेंस सो एंड सो है, तो करंट बताइए या वोल्टेज बताइए। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना होता है रेजिस्टेंस कितना है, या फिर किस तरीके का जो सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, वो आप लोगों को सीरियल नंबर 8 में दिखाया गया। उसके बाद अगर ऐसा रेजिस्टेंस का सोर्स है आपके पास जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, बदलता है, बदल सकते हैं उसको, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस डिवाइस को हम रियोस्टैट कहते हैं। ऐसा डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस रखता है, तो उसे हम रियोस्टैट कहते हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है सीरियल नंबर 9 में टेबल 12.1 में आपको दिखाया गया है। तो दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर रियोस्टैट के भी दो पिक्चर्स आपको दी गई हैं, तो इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इनमें से ऐसा नहीं है कि पहले वाले को प्रेफरेंस देते हैं या दूसरे वाले को प्रेफरेंस देते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है, रियोस्टैट के ये दोनों सिंबल्स ही यूज में होते हैं। उसके बाद अमीटर अगर लगाया हुआ है हमने सर्किट के अंदर, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर कैपिटल ए लिखते हैं, एक जगह हायर पोटेंशियल होता है, एक जगह लोअर होता है, तो जिस साइड हायर है उसको पॉजिटिव साइन से दिखा सकते हैं, जिस साइड लोअर पोटेंशियल है उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीरियल नंबर 10 में टेबल 12.1 पेज नंबर 203 में आपको अमीटर किस तरीके का दिखता है सर्किट डायग्राम के अंदर वो दिखाया गया। उसके साथ ही उसी के जस्ट नीचे सीरियल नंबर 11 पर आपको वोल्ट मीटर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी दिखाया गया। सर्कल बनाते हैं, सर्कल के अंदर कैपिटल वी लिख देते हैं, जिस साइड हायर पोटेंशियल है उसे प्लस से दिखाते हैं, जिस साइड लोअर पोटेंशियल है उसे नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे डिवाइसेस जो हैं, सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिनका सर्किट डायग्राम बनाते वक्त डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ये आप लोगों को टेबल 12.1 में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और आपको यहाँ पर सारे जो रिप्रेजेंटेशंस है, सारे के सारे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस है डिवाइसेस के, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपसे 12th में भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। इसको समझने के लिए आप लोगों को एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है, एक्टिविटी 12.1। उसके बाद ये एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आपको सबसे पहले तो निक्रोम वायर चाहिए होगी। निक्रोम वायर आप लोगों को पता होना चाहिए, निक्रोम क्या होता है, निक्रोम एक अलॉय होता है, तीन मेटल्स कुछ मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है, निकल क्रोमियम मैंगनीज आयरन, ये सभी मेटल्स का मिला करके जो मटेरियल बनाते हैं उसे निक्रोम कहते हैं। तो अलॉय बेसिकली क्या होता है, अलॉय कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर जो सब्सटेंसेस यूज किए गए हैं ये हमने मेटल्स यूज किए हैं, कौन कौन से मेटल्स, निकल क्रोमियम मैंगनीज आयरन, ये सभी के सभी मेटल्स को मिला करके जो मटेरियल बना है वो निक्रोम कहलाता है, और इसी निक्रोम से एक वायर बनाई गई है, और वो आप लोगों को आधा मीटर करीब चाहिए, 0.5 मीटर का आप लोगों को निक्रोम वायर चाहिए, और इस वायर का नाम आपने रखा है एक्स वाई। इसी के साथ में आप लोगों को एक अमीटर भी चाहिए, आप लोगों को एक वोल्ट मीटर भी चाहिए, आप लोगों को चार सेल्स चाहिए और उन चारों में से चार सेल्स जो है एक एक सेल का वोल्टेज जो है वो 1.5 वोल्ट होना चाहिए। तो आप लोगों को चार चाहिए ऐसे सेल्स, 1.5 वोल्ट के चार सेल्स आपको चाहिए। उसके साथ में आप लोगों को लंबी वायर्स चाहिए कनेक्शन करने के लिए और एक स्विच भी चाहिए ताकि आप लोग सर्किट को क्लोज या फिर ऑन कर सके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये सारी चीजें इकट्ठा करके आप लोगों को ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब सबसे पहले क्या करोगे, जो निक्रोम वायर आपने ली है जिसका नाम रखा है एक्स वाई, ये निक्रोम वायर की कुछ रेजिस्टेंस होती है तो आपने इसे एज अ सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस यूज किया है। अब इसके अक्रॉस आप क्या करें, एक वोल्ट मीटर लगा दें, जो आपने निक्रोम वायर लिया है इसके अक्रॉस यानी कि इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर आप लगा देंगे। आप लोग यहाँ पर रेफर कर सकते हैं पेज नंबर 204 पर जो आप लोगों को फिगर 12.2 दिया है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट को देखते देखते आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी एक्स वाई की निक्रोम वायर लीजिए, निक्रोम वायर लगाई, उसके पैरेलल में आपने क्या करना है, आपने एक वोल्ट मीटर लगा देना है। पैरेलल में कैसे लगाते हैं ये तो आपको पता होगा। आप क्या करेंगे, आपका जो निक्रोम वायर है उसका एक एंड है, उसके दो एंड है, एक एंड है एक्स, दूसरा एंड है वाई। अब एक्स वाला जो एंड है उसको आपको जोड़ना है। अब आपके पास जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के भी दो वायर्स निकल रहे होंगे, तो एक वायर जो है उसको आपको निक्रोम के एक्स वाले एंड से जोड़ना है और एक वायर जो वोल्ट मीटर का निकल रहा है उसको वाई वाले एंड से जोड़ना है। तो इस तरीके से कॉमन पॉइंट्स आ जाते हैं। तो जब भी आप पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो कॉमन पॉइंट्स आ जाने चाहिए। उसके बाद आपको ये जो आपने बनाया है सेटअप जिसके अंदर आपने निक्रोम वायर को पैरेलल में जोड़ा है वोल्ट मीटर से, इसको आपको सीरीज में पहले आपको एक अमीटर भी लगाना है। अब आप वायर्स फिर से जोड़ेंगे, लंबी लंबी वायर्स आप लगाएंगे और एक जो वाई वाला एंड है उससे आपने एक अमीटर जोड़ दिया है और ये आपने वायर की सहायता से किया है। आपने एक वायर लिया है, उस वायर को आपने जो कॉमन पॉइंट है वाई वाला एंड, निक्रोम वायर का वाई वाला एंड और उसी से जुड़ा हुआ है हमारे वोल्ट मीटर का एक वायर का एंड, तो ये जो कॉमन पॉइंट है इससे आपने एक तार जोड़ना है और उस तार को आपने अमीटर के एक एंड से जोड़ देना है। अब अमीटर का दूसरा एंड जो है उसको की से जोड़ा गया है और की को भी फिर जोड़ने के बाद की का जो दूसरा एंड है उसको एक लंबी वायर लेकर के ऐसे ही लंबी वायर करके उसको छोड़ दिया है। उसको हम सबसे पहले एक सेल से जोड़ेंगे, फिर दो सेल से, इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने निक्रोम वायर लेना है, उसके वोल्टेज को उस चेक करने के लिए हम उसके अक्रॉस उसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। उसके बाद आपने निक्रोम वायर के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, फिर इन दोनों के साथ सीरीज में आपकी सर्किट के अंदर सीरीज में आपने एक अमीटर जोड़ दिया है, अमीटर से एक की जोड़ी है, की से दूसरी जो एंड उसकी है उसको एक लंबे वायर से जोड़ करके छोड़ दिया है ऐसे ही। अब आ जाइए निक्रोम का जो एक्स वाला एंड है उससे भी एक लंबी वायर जोड़ करके ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, ये आपका सेटअप तैयार हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दो वायर्स हो गए, एक तो एक्स वाले एंड से लंबी वायर जोड़ी गई है और एक की वाला जो एंड है उसका एक एंड है तो उससे एक लंबी वायर जोड़ी गई है। तो ये जो दो वायर्स हैं हमारे पास फ्री वायर्स के एंड्स हैं, तो इनसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बैटरी लेंगे और एक बैटरी जिसकी वोल्टेज कितनी है 1.5 वोल्ट, तो इसको जोड़ देंगे। जब हम एक सेल यूज करते हैं तो उसे बैटरी नहीं कहते हैं, तो मुझसे गलती हुई है। तो यहाँ पर आप जब भी एक सेल यूज करेंगे तो सेल कहेंगे, बैटरी नहीं कहेंगे। तो आपने 1.5 वोल्ट का एक सेल यूज करना है और वायर से जोड़ देना, उसके दोनों टर्मिनल्स को वायर से जोड़ देना। तो इससे क्या होगा कि आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने की जो है वो क्लोज करके रखी हुई है, ऑन करके रखा हुआ है, तो इससे आपके सर्किट के अंदर क्या करेगा कि करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर जाए तो आप वोल्ट मीटर की रीडिंग देखेंगे, अमीटर की रीडिंग देखेंगे, दोनों की रीडिंग्स देख करके आपके पास यहाँ पर एक टेबल आप लोगों को दिया गया है पेज नंबर 204 पर। ये जो एक्टिविटी की जा रही है इसी में आप लोगों को एक टेबल दिया गया है। तो इस सबसे पहले आपने एक ही सेल यूज किया है और उससे आपको चेक करना है कि उस सेल की मदद से सर्किट में कितने एम्पियर की वायर, कितने एम्पियर की करंट जा रही है, उसकी वैल्यू आप लिख देंगे, करंट थ्रू द निक्रोम वायर आई एम्पियर में। तो यहाँ पर आप करंट की वैल्यू लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप लोगों को देखना है वो आप लोगों को कहाँ देखना है, वोल्ट मीटर के अंदर देखना है, तो वो भी आप लोग लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी वोल्टेज की, कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यू आएगी एम्पियर यानी कि करंट की, तो आपको V बाई आई करना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आया है उसको डिवाइड कर देना है करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से। तो आपको ये रेशो भी निकालते जाना है साथ के साथ। तो आपने सबसे पहली बारी तो एक ही सेल यूज किया था, दूसरी बारी क्या करिए, एक सेल को लगे रहने दीजिए, उसके साथ एक और सेल जोड़ देना है आपको। तो इस बारी आपने दो सेल यूज किया है, तो बैटरी जिसके अंदर दो सेल है, ऐसा आपने एक बैटरी का कनेक्शन बनाया है। तो इस बार आपको फिर से चेक करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, दो सेल लगाने के बाद अब कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपको चेक करना है, उसकी वैल्यू जो आई है वो आपको लिख देना है। इसी के साथ में आपको ये भी चेक करना है कि पोटेंशियोमीटर जो है, सॉरी जो वोल्ट मीटर है वो कितनी रीडिंग दिखा रहा है। तो उससे रीडिंग जो दिख रही होगी, पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लोगों को अब नया पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि इस बार आपने दो सेल यूज किए हैं। तो इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा वो भी आप लोगों को नोट कर देना है। और फिर से आपको रेशो निकालना है V बाय I का, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट का रेशो निकाल करके आपको उसकी वैल्यू भी लिख देनी है। इसी तरीके से प्रोसीड करते जाना है। अभी दो सेल यूज किया है, फिर तीन सेल यूज करेंगे, फिर चारों सेल यूज करेंगे, और इस तरीके से साथ के साथ में करंट की क्या वैल्यू आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू आ रही है, उन वैल्यूज को नोट करते जाना है, साथ के साथ V बाय I का रेशो निकालते जाना है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट का रेशो निकालते जाना है, और इस टेबल को फिल करना है, जो टेबल आप लोगों को फिगर 12.2 के नीचे दी गई है, इस टेबल को आपको फिल करना है। उसके बाद आपने जो टेबल फिल किया है, तो आपके पास कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, करंट की कुछ वैल्यू आई होगी, जो आपने एक सेल यूज किया था तो करंट की कुछ वैल्यू आई होगी एमीटर में, पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ वैल्यू आई होगी आपके वोल्ट मीटर में, फिर V बाय I की भी कुछ वैल्यू आई होगी। तो इस तरीके से हर एक, जैसे जैसे आपने अपना एक सेल, फिर दो सेल, फिर तीन सेल, फिर चार सेल, ऐसे ऐसे आपने जैसे जैसे एक्टिविटी की है, वैसे वैसे आप लोगों को कुछ कुछ वैल्यूज मिली है। अब इन वैल्यूज को यूज करके आपको एक ग्राफ भी बनाना है। इस ग्राफ में आपको जो वाई एक्सिस है उस साइड आपको पोटेंशियल डिफरेंस रखना है, और एक्स एक्सिस के साइड आप लोगों को करंट रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आपको वाई एक्सिस में रखना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और करंट को आप लोगों को पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रखना है, और आपको ग्राफ बनाना है। जो ग्राफ होगा वो किस किस के किन दो वैल्यूज के बीच में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। तो ये वी आई ग्राफ है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच की हमने ग्राफ बनाई है। तो मान लीजिए कि आपको सबसे पहली बार जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, जब आपने एक सेल यूज किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को 0.4 वोल्ट मिला। तो आप 0.4 वोल्ट का यहाँ पर वाई एक्सिस में एक पॉइंट लगा देंगे, और जिस वक्त आपको आपके वोल्ट मीटर में 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिला, उस वक्त आप लोगों को 0.1 एम्पियर का मान लीजिए करंट मिला अमीटर के अंदर। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपका करंट वाला जहां पर आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर आपका करंट हो 0.1 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस हो 0.4 वोल्ट। इस पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस तरीके से चारों पॉइंट्स जो है वो आपको प्लॉट करने हैं, जो चार आप लोगों को एक्टिविटी करते वक्त वैल्यूज मिली है, चार पोटेंशियल डिफरेंस की, चार करंट की, तो ये चारों आप लोगों को प्लॉट कर देनी है। तो आप जब प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो आप ये देखेंगे कि जो वी आई ग्राफ है इसके अंदर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये जो वी आई ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मिल रही है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास करती है। तो यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन इन वी आई ग्राफ दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं कि यहाँ पर वी आई ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है एंड इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। और साथ में आपने एक और बात नोटिस की होगी, वो ये होगी कि हर एक सिचुएशन में आप जो V बाय I का रेशियो निकाल रहे थे ये नियरली सेम ही आ रहा था। तो इससे भी आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। V बाय I ये स्लोप है, परपेंडिकुलर बाय बेस ये हमारा स्लोप है ग्राफ का। तो ये आप लोगों को बार बार कांस्टेंट मिलने का मतलब है कि एक कांस्टेंट स्लोप वाली लाइन आपको मिल रही है, इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब सबसे पहले जो ये स्टडी की गई थी ओम्स लॉ के बारे में, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया था वो थे एक जर्मन फिजिसिस्ट साइमन ओम। साइमन ओम ने सबसे पहले कहा था कि ओम्स लॉ क्या है, उनके हिसाब से कि अगर किसी मेटेलिक वायर के अंदर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। तो अगर आप जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना आप करंट बढ़ाएंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो रूल है ये तभी फॉलो करेगा अगर आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखें, जहां पर आप वायर रखे हुए हैं उस वायर का आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना होगा, तभी उस वायर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो उस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर आपने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है इस तभी सिर्फ। और यही हमारा ओम्स लॉ भी होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है करंट फ्लोइंग इन अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दैट वायर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इसे बोलते हैं ओम्स लॉ। तो इसे अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I, कैपिटल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल I। अब V by I जो होगा वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हम R से लिखते हैं, कैपिटल R। अब आप लोग, कैपिटल R जो होता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखा गया है। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये मिल गया आप लोगों को इक्वेशन। इसका यूज करके आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसलिए आपको लिखना है V इज इक्वल टू आई आर। आर जो है वो क्या है? वो है रेजिस्टेंस, और आई जो है वो करंट है, वी जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए आपको क्या कहना होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस शब्द ही ऐसा है, रेजिस्टेंस मतलब कि रोकना। तो जो फ्लो हो रहा है आपके मेटलिक वायर के अंदर करंट का, तो उस करंट के फ्लो को रोकने का जो क्षमता होती है वायर के अंदर वो रेजिस्टेंस कहलाती है। उस वायर की रेजिस्टेंस यानी कि उस वायर की करंट की फ्लो को रोकने की क्षमता जो है वो उसके रेजिस्टेंस से हम पता लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस को हम ओम्स में लिखते हैं। कितना वैल्यू है? मान लीजिए 10 ओम, तो इसका मतलब है कि 10 रेजिस्टेंस है। 10 ओम, तो इसको जब हम लिखते हैं, जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में लिखते हैं, तो ऐसा यूनिट जो है हमारे रेजिस्टेंस का वो ओम होता है। सिंबल इसका जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओम को एक ग्रीक लेटर से शो करते हैं। पेज नंबर 205 पर सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन है, उसी में आप लोगों को ग्रीक लेटर से आप लोगों को एक सिंबल दिखाया गया, ये ओम का सिंबल होता है। अब अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस डिफाइन करना है एक ओम का, तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा? आपको एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा और एक एम्पियर का करंट चाहिए होगा। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आप 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये इक्वेशन जो है ये याद रखनी है, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कंटिन्यू करना है इसके आगे की टॉपिक्स को भी, तो आपने जो आज पढ़ा है उसे आपने रिवाइज कर लेना है, और सिंबल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोल सकते हैं या फिर सर्किट डायग्राम को रीड करने के लिए बोल सकते हैं एग्जाम में। तो आप लोगों को सारे सिंबल्स पता होने चाहिए, किस तरीके से डायग्राम में हम शो करते हैं वो सब पता होना चाहिए। और आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट्स हैं तो आप अपने टीचर से जरूर पूछिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।